एकत्रा फाउंडेशन की पेशकश ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। यहाँ हम दुनिया के कुछ सबसे दिलचस्प विचारों और उन्हें देने वालों की दुनिया में झांकते हैं, आसान भाषा में। ये चर्चा एकत्र एआई की मदद से तैयार की गई है।
नमस्कार, आज हम एक ऐसे विचारक की बात करने वाले हैं जिनकी सोच ने, आप कह सकते हैं, सदियों पहले दुनिया को हिला दिया था और जिसका असर आज भी महसूस होता है।
हाँ बिल्कुल,
ये है इंग्लैंड के विलियम ऑफ ओकहम, जो करीब 1287 से 1347 तक रहे।
जी, सिर्फ दार्शनिक नहीं बल्कि एक धर्मशास्त्री, राजनीतिक विचारक और एक तरह से अपने समय के बागी भी थे।
बिल्कुल सही कहा आपने, बागी ही थे। उनका काम मध्ययुगीन सोच और आज की दुनिया के बीच आप कह सकते हैं एक पुल जैसा लगता है। ओकहम को याद करने की कई वजह हैं, पर दो बातें तो ऐसी हैं जो आज भी हमारी सोच को मतलब सीधी चुनौती देती हैं।
अच्छा, कौन सी दो बातें?
पहला, उनका मशहूर सिद्धांत ओकहम का रेजर।
हाँ, ये तो सुना है।
हाँ, सुनने में शायद सीधा लगे, भाई फालतू की चीजें मत मानो या जितना जरूरी है उतना ही मानो, पर उस जमाने में ये कितना क्रांतिकारी था इस पर थोड़ी बात करते हैं।
जरूर। और दूसरा?
और दूसरा, उनका नॉर्मलिज्म यानी नामवाद, ये विचार के इंसानियत या खूबसूरती जैसी जो आम चीजें हैं,
हाँ,
वो असल में है ही नहीं, ये सिर्फ हमारे दिए हुए नाम हैं। असल में तो सिर्फ अलग अलग इंसान और अलग अलग खूबसूरत चीजें ही हैं।
अरे वाह, ये तो सच में मतलब सोचने का पूरा तरीका बदलने वाली बात लगती है।
है ना? बिल्कुल।
तो आज हम ओकहम की इसी दिलचस्प दुनिया में गहरे उतरेंगे, देखेंगे कि उनका जीवन कैसा उथल पुथल भरा था, किस माहौल में उनके ये विचारपन पे,
जी,
उनकी सोच का फलसफे, सियासत और यहाँ तक कि विज्ञान पर क्या असर पड़ा, और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि सैकड़ों साल बाद भी ओकहम हमारे लिए क्यों मायने रखते हैं।
हाँ, और इस पूरी चर्चा के लिए हमने कई स्रोतों का सहारा लिया है जो ओकहम के जीवन, उनके दर्शन और हाँ, उनके समय के जो राजनीतिक दांव पेंच थे उन पर रोशनी डालते हैं।
बढ़िया, तो चलिए कहानी शुरू करते हैं उस दौर से, 14वीं सदी के यूरोप से। ये कैसा वक्त था जब ओकहम अपनी सोच को कह सकते हैं शक्ल दे रहे थे?
देखिए, 14वीं सदी यूरोप के लिए बहुत उथल पुथल वाला दौर था। एक तरफ तो पुरानी सोच जिसे मध्ययुगीन पांडित्यवाद या स्कोलास्टिसिज्म कहते हैं,
हाँ स्कोलास्टिसिज्म,
यानी वो धर्म और तर्क को मिलाने की जो कोशिश थी वो अपने चरम पर पहुंचकर अब ढलान पर थी।
अच्छा।
दूसरी तरफ राजनीति में भारी खींचतान थी। पोप जो तब फ्रांस के एविंगन शहर में बैठते थे और पवित्र रोमन साम्राज्य के शासक के बीच सत्ता की जबरदस्त लड़ाई चल रही थी, मतलब धर्म और राज्य सत्ता आमने सामने थे।
और विचारों की दुनिया में क्या चल रहा था? जाहिर है वहां भी शांति तो नहीं होगी।
बिल्कुल नहीं, वहां भी आप कह सकते हैं घमासान मचा हुआ था। दो बड़े खेमे थे, एक थॉमस एक्विनस के अनुयायी जो अरस्तु के तर्क और ईसाई धर्म में तालमेल बिठाना चाहते थे, और दूसरे थे डनस्कॉटर्स के समर्थक जिनके विचार कहीं ज्यादा जटिल थे।
अच्छा, स्कॉटिस।
हाँ, अरस्तु का प्रभाव तो था लेकिन यूरोप में उनके विचार अक्सर इब्न रुश्द, जिन्हें एवरोएस कहते हैं, और इब्न सीना यानी एविसेना,
हाँ हाँ महान इस्लामी विचारक,
जी, उन्हीं की व्याख्याओं के जरिए पहुंचे थे। ओकहम इसी माहौल में बड़े हुए। उन्होंने अरस्तु से सीखा जरूर, लेकिन अपने से पहले के विचारकों, खासकर डनस्कॉटस,
हाँ वो जटिलता वाले,
जी, उन्हीं के बड़े बड़े और जटिल सिद्धांतों को उन्होंने चुनौती दी। उन्हें लगा कि ये बेवजह की पेचीदगियां हैं, मतलब जरूरत नहीं है इनकी।
तो उनके दौर के और कौन से बड़े नाम थे जिनसे उनका कह सकते हैं वास्ता पड़ा?
राजनीतिक गलियारों में देखें तो मार्सिलियस ऑफ पादुआ थे, एक और विचारक जो पोप की सत्ता को चुनौती दे रहे थे।
अच्छा,
ओके, हमने बाद में उनके साथ मिलकर पोप जॉन 22वें का विरोध किया। विचारों की दुनिया में उनके ठीक पहले डन्स स्कॉटिस थे जिनकी जटिलता पर ओकहम ने सवाल उठाए, और हाँ, उनके सबसे बड़े विरोधी बने पोप जॉन 22।
पोप जॉन 22,
हाँ, जिनसे उनका टकराव उनके जीवन का एक बहुत अहम मोड़ साबित हुआ।
चलिए अब जरा ओकहम के शुरुआती दिनों पर नजर डालते हैं। इंग्लैंड के ओकहम गांव में जन्म और फिर फ्रांसिस्कन संप्रदाय में शामिल होना, ये कैसे हुआ?
हाँ, करीब 1287 में जन्म हुआ। कम उम्र में ही वे फ्रांसिस्कन संप्रदाय में शामिल हो गए थे। ये संप्रदाय अपनी सादगी और गरीबी के व्रत के लिए जाना जाता था।
हाँ, फ्रांसिस्कन्स।
जी, उनकी पढ़ाई लिखाई फ्रांसिस्कन स्कूलों और फिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में हुई। ऑक्सफोर्ड उस जमाने में यूरोप का एक बहुत बड़ा बौद्धिक गढ़ था।
बिल्कुल।
यहीं पर ओकहम का सामना इंग्लैंड की अनुभववादी परंपरा से हुआ, यानी ये सोच कि ज्ञान का आधार हमारा अनुभव है, हमारी इंद्रियां हैं। इस परंपरा ने ओकम की सोच पर बहुत गहरी छाप छोड़ी।
उन्हें वेनेराबलिस इंसेप्टर यानी आदरणीय आरंभकर्ता भी कहा जाता था। ये थोड़ा अजीब सा टाइटल है, इसका क्या मतलब हुआ?
ये दिलचस्प है। इसका मतलब है कि उन्होंने धर्मशास्त्र में मास्टर्स डिग्री के लिए सारी पढ़ाई और शर्तें तो पूरी कर ली थीं, लेकिन उन्हें कभी औपचारिक रूप से प्रोफेसर या रीजेंट मास्टर का पद नहीं मिला।
अरे क्यों?
शायद उनके विचार इतने विवादास्पद थे, इतने नए थे कि अधिकारी उन्हें ये पद देने से हिचकिचा रहे थे।
अच्छा,
तो तकनीकी रूप से वे हमेशा एक शुरुआत करने वाले या इंसेप्टर ही रहे, भले ही उनका बौद्धिक कद बहुत बड़ा हो चुका था।
और फिर आया वो मोड़ जिसने उनकी जिंदगी बदल दी, 1324 में एविंगन का बुलावा।
बिल्कुल, ये उनके जीवन का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था। उनके जो अकादमिक विरोधी थे वो उन पर विधर्म यानी धर्म विरोधी होने का आरोप लगा रहे थे।
विधर्म का आरोप?
हाँ, इसी सिलसिले में उन्हें पोप के दरबार में, जो उस समय एविंगनॉन में था, तलब किया गया। उन्हें शायद लगा था कि ये कुछ समय की बात होगी, लेकिन वो वहाँ 4 साल तक एक तरह से नजरबंद रहे, जांच चलती रही।
4 साल? और वहीं पर वो एपिस्टोलिक गरीबी वाली बहस छिड़ी?
हाँ हाँ बिल्कुल, एविंगनॉन में रहते हुए ही इस बहस में कूद पड़े। देखिए, फ्रांसिस्कन मानते थे कि ईसा मसीह और उनके शुरुआती अनुयायी यानी प्रेरित बेहद गरीब थे, उनके पास कोई निजी संपत्ति नहीं थी, ये उनके लिए एक आदर्श था। लेकिन पोप जॉन 22 इस विचार के सख्त खिलाफ थे, उन्होंने तो इस सिद्धांत को ही विधर्मी मतलब धर्म के विरुद्ध घोषित कर दिया।
ओहो।
अब ओकम के लिए ये बात पचाना मुश्किल था। उन्हें लगा कि अगर पोप ईसा मसीह के आदर्शों के खिलाफ जा रहा है तो फिर पोप खुद ही विधर्मी है।
क्या बात है, ये तो सीधा पोप से टकराव हो गया।
हाँ, बस यहीं से उनका ध्यान दर्शन की बारीकियों से हटकर चर्च की सत्ता और राजनीति पर ज्यादा टिक गया।
और इसी वजह से उन्हें फिर भागना पड़ा एविग्नॉन से।
जी हाँ, जब ओकम को लगा कि पोप उन्हें सजा देने वाला है, तो 1328 में एक रात वे और फ्रांसिस्कन संप्रदाय के मुखिया माइकल ऑफ ससेना चुपके से एविग्नॉन से भाग निकले।
रात में?
हाँ, ये एक बहुत खतरनाक सफर था। वे भागकर पवित्र रोमन सम्राट लुई चतुर्थ, जो बवेरिया के थे, उनके पास म्यूनिक पहुंचे और उनसे शरण मांगी।
अच्छा, सम्राट के पास?
हाँ, कहते हैं वहां पहुंचकर ओकम ने सम्राट से कहा था, आप अपनी तलवार से मेरी रक्षा करें, मैं अपनी कलम से आपकी रक्षा करूंगा।
वाह, क्या लाइन है, तलवार और कलम का ये गठबंधन। तो जिंदगी के बाकी साल उन्होंने म्यूनिक में ही गुजारे?
हाँ, करीब अगले 20 साल यानी अपनी मृत्यु तक वे म्यूनिक में ही रहे, और इन सालों में उन्होंने अपना पूरा ध्यान राजनीतिक लेखन पर लगा दिया।
अच्छा, तो दर्शन से राजनीति की तरफ?
हाँ, ज्यादातर उन्होंने ऐसे ग्रंथ लिखे जिनमें चर्च की सत्ता को सीमित करने और राजा की सत्ता को सही ठहराने की दलीलें थीं। वे पोप की सत्ता को एक तरह का अत्याचार मानते थे और उसके खिलाफ जमकर लिखते रहे।
तो अब उनकी कुछ अहम किताबों पर बात करते हैं, जैसे सुम्मा लॉजिका। ये तो तर्कशास्त्र पर है ना?
हाँ, सुम्मा लॉजिका करीब 1323 ऊपरी तौर पर तो लॉजिक यानी तर्कशास्त्र की किताब लगती है, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा है। ये असल में उनके पूरे नामवादी दर्शन का एक खाका है।
अच्छा, कैसे?
इसमें वे समझाते हैं कि हमारी भाषा, हमारे शब्द, हमारी अवधारणाएं उस असल दुनिया से कैसे जुड़ती हैं जो सिर्फ अलग अलग अकेली चीजों से बनी है। मतलब दुनिया में कुर्सीपन नहीं है, सिर्फ अलग अलग कुर्सियां हैं। इसी किताब में हमें उनके रेजर वाले सिद्धांत के शुरुआती संकेत भी मिलते हैं।
और उनकी एक और शुरुआती किताब थी कॉमेंट्री ऑन द सेंटेंसेस ऑफ पीटर लोम्बार्ड, इसका क्या महत्व था?
ये किताब करीब 1317 से 1319 दरअसल उस समय के धर्मशास्त्र के एक मानक ग्रंथ पर लिखी गई उनकी टिप्पणी थी, लेकिन इसी में ओकम ने पहली बार अपने उन विस्फोटक विचारों को खुलकर रखा जिसने बाद में इतना हंगामा खड़ा किया।
जैसे कि?
जैसे उन्होंने यहीं पर सार्वभौमिक के अस्तित्व को नकारा, ज्ञान कैसे मिलता है इस पर अपने अनुभववादी विचार रखे, और ईश्वर की असीम शक्ति और इच्छा पर जोर दिया। इसी किताब ने चर्च के कर्ता धर्ताओं को कह सकते हैं चौंका दिया, और फिर विवादों का सिलसिला शुरू हो गया।
और उनकी राजनीतिक सोच का सबसे बड़ा ग्रंथ कौन सा माना जाता है?
वो है डायलॉगिस डी प्रोटेस्टेट पेपर एट इम्पेरिटोरियस, जिसका मतलब है पोप और सम्राट की शक्ति पर संवाद।
अच्छा, संवाद।
हाँ, ये उन्होंने म्यूनिक में करीब 1334 से 1347 के बीच लिखा। ये किताब एक गुरु और शिष्य के बीच बातचीत की शक्ल में है। इसमें ऑकहम बड़ी बारीकी से तर्क देते हैं कि पोप की सत्ता सिर्फ आध्यात्मिक मामलों तक ही सीमित होनी चाहिए।
अच्छा।
दुनियावी मामलों में राजा या सम्राट की सत्ता ही असली है और उसका अपना एक अलग दायरा है। ये आज के चर्च और राज्य के अलगाव, मतलब सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट, के विचार की शुरुआती और बहुत मजबूत दलीलों में से एक मानी जाती है। एक छोटी लेकिन बहुत धारदार किताब थी। इसमें उन्होंने पोप की बढ़ती ताकत पर सीधा हमला बोला और ये तर्क दिया कि चर्च से जुड़े फैसले लेने का अधिकार सिर्फ पोप का नहीं बल्कि चर्च की परिषदों का होना चाहिए।
अच्छा, परिषदों का।
जी,
और साथ ही उन्होंने राजाओं और शासकों के अधिकारों का भी बचाव किया।
चलिए अब जरा ऑकहम के दार्शनिक विचारों की गहराइयों में उतरते हैं। सबसे पहले नॉमिनलिज्म या नामवाद, आपने शुरू में इसका जिक्र किया था, इसे थोड़ा और समझाएंगे।
जरूर। नॉमिनलिज्म आप कह सकते हैं ऑकहम की सबसे बड़ी दार्शनिक पहचान है। उनका कहना था कि ये जो आम या यूनिवर्सल विचार हैं, जैसे इंसानियत, जस्टिस या मान लीजिए लालपन,
हाँ,
ये असल दुनिया में कहीं मौजूद नहीं है। ये तो सिर्फ नाम, नामिना है या हमारे दिमाग में बनी अवधारणाएं हैं।
सिर्फ नाम, हाँ, जिनका इस्तेमाल हम एक जैसी दिखने वाली अलग अलग चीजों को एक समूह में रखने के लिए करते हैं। असल में तो सिर्फ अकेली खास चीजें, इंडिविजुअल्स ही मौजूद हैं। ये कुर्सी, वो इंसान, वो लाल सेब।
अच्छा।
ये उस समय की सोच के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि प्लेटो और अरस्तु के समय से तो यही माना जाता था कि ये सार्वभौमिक विचार ही असली हैं या ज्यादा असली हैं।
ये तो वाकई सोचने के पूरे ढांचे पर ही सवाल उठाना हुआ। और फिर है उनका मशहूर रेजर, ये कैसे काम करता है?
हाँ, ओकम का रेजर, जिसे मितव्ययिता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ पार्सिमनी भी कहते हैं। इसका सबसे जाना माना रूप है, जरूरत के बिना चीजों को बढ़ाना नहीं चाहिए, प्लूरालिटास नॉन एस्ट पोनेंदा सिने नेसेसिटाए। या दूसरे शब्दों में, जो काम कम चीजों से हो सकता है उसे ज्यादा चीजों से करना बेकार है। फ्रॉस्ट्रॉ फिट पर प्लूरा, क्वाड पोटेस्ट फियरी पर पॉक्योरा।
तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे आसान बात ही सच है?
नहीं नहीं, ये बहुत आम गलतफहमी है। ऑकहम ने ये नहीं कहा। इसका मतलब है कि अगर किसी चीज को समझाने के लिए आपके पास दो या ज्यादा सिद्धांत हैं और दोनों बराबर काम कर रहे हैं, मतलब बराबर समझा पा रहे हैं, तो आपको वो वाला चुनना चाहिए जिसमें कम चीजें माननी पड़े, जो कम धारणाओं पर टिका हो।
अच्छा, कम धारणाओं वाला।
हाँ, ये एक तरह से सोचने में फिजूल खर्ची से बचने का तरीका है। ऑकहम ने इसका इस्तेमाल अपने से पहले के दार्शनिकों के बनाए हुए बड़े बड़े जटिल मेटाफिजिकल सिस्टम्स,
हाँ, वो दुनिया की असलियत वाले सिद्धांत,
जी, उन्हीं की काटछाट करने के लिए किया। जो चीजें जरूरी नहीं थीं, उन्हें उन्होंने इस रेजर से हटा दिया।
अच्छा, तो ये सफाई का एक औजार था एक तरह से। और ज्ञान कैसे मिलता है, इस बारे में उनके क्या विचार थे, उनका अनुभववाद कैसा था?
देखिए, ऑकहम का मानना था कि हमारे सारे ज्ञान की शुरुआत सहज अनुभूति, इंट्यूटिव कॉग्निशन से होती है।
सहज अनुभूति मतलब?
ये सहज अनुभूति है। इसी अनुभव से हमें पक्का ज्ञान मिलता है कि कोई चीज मौजूद है या नहीं।
अच्छा।
ज्ञान की बुनियाद हमारी इंद्रियों के अनुभव पर टिकी है। ये सोच उन्हें बाद के जो ब्रिटिश अनुभववादी थे, जैसे लॉक, बर्कले, ह्यूम, उनका पुरखा बनाती है।
हाँ, हाँ।
उन्होंने सहज ज्ञान, जो चीज अभी हमारे सामने है उसका सीधा ज्ञान, और अमूर्त ज्ञान, यानी चीज सामने न होने पर भी उसके बारे में सोचना या उसकी एक अवधारणा बनाना, के बीच फर्क भी किया।
और ईश्वर की इच्छा और तर्क के बारे में उनकी क्या राय थी? ये थोड़ा जटिल लगता है।
हाँ, ये थोड़ा पेचीदा है पर बहुत अहम है। ऑकहम ने ईश्वर की परम स्वतंत्रता और इच्छा, पोटेंशिया डे एब्सोल्यूटा, पर बहुत ज्यादा जोर दिया।
परम स्वतंत्रता
बातों के, जैसे 2+2=5 बनाना, दुनिया के नियम, नैतिकता के सिद्धांत, ये सब इसलिए नहीं है कि ये किसी शाश्वत जरूरी तर्क पर आधारित है, बल्कि इसलिए है क्योंकि ईश्वर ने अपनी मर्जी से ऐसा चाहा है।
मतलब ईश्वर जाता तो नियम बदल भी सकता था।
बिल्कुल।
ओके।
ऑकहम के हिसाब से हाँ। इसका नतीजा ये हुआ कि उनके दर्शन में तर्क और विश्वास के बीच एक गहरी खाई सी बन गई।
अच्छा।
कुछ चीजें हैं जिन्हें हम तर्क और अनुभव से जान सकते हैं, जैसे ये दुनिया कैसे काम करती है, लेकिन ईश्वर, आत्मा, नैतिकता के परम सत्य जैसी चीजें, वो सिर्फ आस्था या ईश्वरीय वाणी जैसे बाइबल के जरिए ही जानी जा सकती हैं, उन्हें तर्क से साबित नहीं किया जा सकता।
अगर हम ओकम की तुलना उनके दौर के दूसरे बड़े विचारक जैसे थॉमस एक्वाइनस से करें तो क्या फर्क नजर आता है?
तर्क और ईसाई धर्म की शिक्षाओं को मिलाकर एक सामंजस्यपूर्ण, एक जुड़ी हुई व्यवस्था बनाई जाए।
हाँ, वो सिंथेसिस वाला काम।
जी, वे मानते थे कि तर्क हमें ईश्वर के अस्तित्व और उसकी प्रकृति के बारे में बहुत कुछ बता सकता है। लेकिन ओकम इस मामले में ज्यादा शक्की थे। उन्होंने कहा कि भाई, तर्क की पहुंच सिर्फ इसी दुनिया तक है जिसे हम अनुभव कर सकते हैं।
अच्छा।
धर्म और ईश्वर से जुड़े सवाल पूरी तरह आस्था के दायरे में आते हैं। उन्होंने इन दोनों क्षेत्रों को लगभग पूरी तरह अलग कर दिया।
और डन स्कॉटस, जिनसे ओकम असहमत थे।
स्कॉटस ने बहुत जटिल मेटाफिजिकल सिस्टम बनाए थे जिनमें कई तरह के सूक्ष्म सत्ताओं और भेदों की कल्पना की गई थी। ओकम को ये सब गैर जरूरी लगा।
तो रेजर चला दिया उनपे।
हाँ, कह सकते हैं। उनका रेजर असल में स्कॉटिस जैसे विचारकों की इन्हीं जटिलताओं को हटाने का एक हथियार था। वहीं दूसरी ओर वॉल्टर बर्ली जैसे यथार्थवादी रियलिस्ट्स थे जो मानते थे कि सार्वभौमिक सच में होते हैं।
हाँ।
उन्होंने ओकम पर आरोप लगाया कि भई, अगर आप इंसानियत या लालपन जैसी चीजों को ही नहीं मानेंगे तो फिर ज्ञान पाना ही नामुमकिन हो जाएगा। आप बात कैसे करेंगे चीजों के बारे में?
तो इतने क्रांतिकारी विचारों का असर क्या हुआ? ओकम की विरासत क्या रही?
उनकी सोच को विया मॉडर्ना यानी नया रास्ता कहा गया। ये 13वीं सदी के पुराने पांडित्यवाद से हटकर एक नई दिशा थी जिसने आधुनिक युग के विचारों के लिए जमीन तैयार की।
अच्छा, विया मॉडर्ना।
हाँ, उनका नामवाद और अनुभववाद पश्चिमी दर्शन के लिए एक बहुत अहम मोड़ साबित हुआ। बाद में जॉन लॉक, जॉर्ज बर्कले, डेविड ह्यूम जैसे बड़े दार्शनिकों के काम में ओकम के विचारों की गूंज साफ सुनाई देती है।
और राजनीति और धर्म के क्षेत्र में वहाँ क्या असर हुआ?
उनके राजनीतिक विचारों ने कंसीलियरिज्म की नींव रखी, यानी ये सोच कि चर्च की परिषदें पोप से ज्यादा अधिकार रखती हैं।
हाँ, आपने बताया था।
जी, ये विचार आगे चलकर प्रोटेस्टेंट सुधार आंदोलन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ। मार्टिन लूथर तो खुलकर कहते थे, मैं ओकम की पार्टी का हूँ।
अरे वाह, लूथर ने कहा था ये?
हाँ, ईश्वर की परम शक्ति, चर्च की परंपराओं के ऊपर बाइबल का अधिकार और धर्म ग्रंथ की व्यक्तिगत व्याख्या पर ओकम का जोर लूथर जैसे सुधारकों के लिए प्रेरणा बना।
और विज्ञान पर भी उनका असर पड़ा, खासकर उनके रेजर का।
बिल्कुल, ओकम का रेजर आज भी वैज्ञानिक पद्धति और दर्शन का एक बुनियादी सिद्धांत माना जाता है। ये हमें सरल और स्पष्ट तर्क करने के लिए प्रेरित करता है। कुल मिलाकर देखें तो सत्ता के बंटवारे, संस्थाओं की मनमानी के खिलाफ व्यक्ति के अधिकार और सीमित सरकार जैसे मुद्दों पर उनके तर्क आज भी प्रासंगिक लगते हैं। भाषा और अर्थ को लेकर उनके विचार तो 20वीं सदी के विश्लेषणात्मक दर्शन एनालिटिक फिलॉसफी की आहट जैसे लगते हैं।
चलिए उनके कुछ मशहूर कथनों को याद करते हैं उनके मतलब के साथ। सबसे पहले वो रेजर वाला, आवश्यकता के बिना बहुलता स्थापित नहीं की जानी चाहिए।
प्लुरालिटस नॉन एस्ट पोनेंडा सिने नेसेसिताती।
हाँ, ये रेजर का सबसे क्लासिक रूप है। सीधा सा मतलब है, अगर किसी चीज को समझाने के लिए सरल तरीका मौजूद है तो बेवजह की जटिल कल्पनाएं या चीजें मत करो, सोचने में कंजूसी बरतो। कह सकते हैं
सोचने में कंजूसी, अच्छा है ये। और इसी का एक और रूप, जो कम से किया जा सकता है उसे अधिक से करना व्यर्थ है।
फ्रस्ट्राफिट पर प्लूरा कॉर्डपोटेस्ट, फीरी पर पाउचियोरा।
ये भी वही बात है, बौद्धिक किफायत पर जोर। ओकम ने इसे अपने विरोधियों के भारी भरकम सिद्धांतों की हवा निकालने के लिए खूब इस्तेमाल किया था।
ज्ञान के बारे में उनका ये कथन भी अहम है, कोई भी बात बिना कारण बताए नहीं माननी चाहिए जब तक कि वो स्वयं सिद्ध ना हो, या अनुभव से ज्ञात ना हो, या पवित्र धर्म ग्रंथ के अधिकार से सिद्ध ना हो।
ये उनकी पूरी ज्ञान मीमांसा एपिस्टेमोलॉजी यानी ज्ञान के सिद्धांत का निचोड़ है एक तरह से। वो कहते हैं कि किसी बात को मानने के सिर्फ तीन जायज आधार हैं। या तो वो बात तर्क से ही सिद्ध हो, जैसे ज्यामिति के सिद्धांत, या आपने उसे खुद अनुभव किया हो, या फिर उन मामलों में जहां तर्क और अनुभव काम न करे वो ईश्वर के वचन यानी धर्म ग्रंथ में लिखी हो।
तर्क, अनुभव या धर्म ग्रंथ, ठीक है। और नामवाद का सार इस कथन में है, कोई भी सार्वभौमिक आत्मा के बाहर मौजूद नहीं है बल्कि केवल आत्मा में है।
बिल्कुल, ये उनकी बुनियादी नामवादी सोच है कि आम या सार्वभौमिक चीजें हमारे दिमाग या भाषा में है, बाहर की दुनिया में नहीं।
और ईश्वर की शक्ति पर ये कथन, ईश्वर की पूर्ण शक्ति गैर विरोधाभास के नियम को छोड़कर किसी भी नियम से बाधित नहीं है,
ये दिखाता है कि वे ईश्वर को कितना शक्तिशाली और स्वतंत्र मानते थे। सिर्फ एक सीमा थी, ईश्वर तार्किक रूप से असंभव काम नहीं कर सकता, जैसे गोल चौकोर बनाना।
हाँ, वो तो है।
दिलचस्प बात यह है कि ईश्वर की इसी असीम शक्ति ने ही ओकम को अनुभव पर इतना जोर देने के लिए प्रेरित किया।
अच्छा, वो कैसे?
क्योंकि अगर दुनिया ईश्वर की मर्जी से बनी है और हम उसकी मर्जी का तर्क पूरी तरह नहीं समझ सकते, तो फिर दुनिया को जानने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? उसे सीधे अनुभव करना। देखो कि उसने क्या बनाया है।
वाह, ये तो बड़ा दिलचस्प कनेक्शन है। जाहिर है इतने तीखे और नए विचारों पर विवाद तो हुआ ही होगा, आलोचनाएं भी हुई होंगी।
जबरदस्त, ओकम को 1328 में चर्च से बहिष्कृत, एक्सकम्युनिकेटेड कर दिया गया था।
हाँ, आपने बताया था।
हालांकि इसका तात्कालिक कारण उनका एविग्नन से भागना और पोप पर हमला करना था, न कि सीधे तौर पर उनका दर्शन। लेकिन हाँ, उनके दार्शनिक विचारों पर भी गहरा शक था।
किस तरह का शक?
आलोचकों को डर था कि उनका कट्टर अनुभववाद और ईश्वर की परम इच्छा पर जोर कहीं ये दुनिया की तर्कसंगत व्यवस्था पर ही सवाल न खड़ा कर दे। उनके कुछ विचारों की तो 1326 में आधिकारिक तौर पर निंदा भी की गई थी।
और उनके रेजर को भी लोग गलत समझते हैं, जैसा आपने बताया।
हाँ, ये बहुत आम गलतफहमी है कि रेजर का मतलब है सबसे सरल सिद्धांत ही सच होता है। ओकम ने ये कभी नहीं कहा। ये सच्चाई नापने का पैमाना नहीं है, बल्कि ये चुनाव करने का एक तरीका है। जब दो सिद्धांत बराबर काम कर रहे हों तो कम मान्यताओं वाला चुने।
उन पर विश्वासवाद, फेदेइज्म को बढ़ावा देने का आरोप भी लगा, ये क्या है?
हाँ, क्योंकि उन्होंने तर्क और आस्था के बीच इतनी बड़ी दीवार खड़ी कर दी थी, तो आलोचकों ने कहा कि ये तो विश्वासवाद है, यानी ये मानना कि आस्था का तर्क से कोई लेना देना नहीं, बल्कि वो तर्क के परे है या शायद उसके विरोधी भी है।
अच्छा,
वॉल्टर बर्ली जैसे उनके विरोधी दार्शनिकों ने तो ये भी कहा कि भाई, अगर आप सार्वभौमिकों को ही नहीं मानेंगे तो ज्ञान कैसे संभव होगा।
क्या आज भी उनके विचारों पर बहस जारी है?
कुछ हद तक हाँ, जैसे कुछ लोग आज भी बहस करते हैं कि क्या विज्ञान में ओकम के रेजर का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल होता है, जिससे शायद जरूरी लेकिन जटिल सिद्धांत नजरअंदाज हो जाते हैं। और ऐतिहासिक रूप से कभी कभी उन्हें आज की धर्मनिरपेक्ष सोच का अग्रदूत बता दिया जाता है, जो कि पूरी तरह सही नहीं है। वो बहुत धार्मिक व्यक्ति थे और उनका मकसद भ्रष्ट चर्च सत्ता के खिलाफ सच्चे ईसाई धर्म की रक्षा करना था, न कि धर्म को खत्म करना।
चलिए अब कुछ और मजेदार या कम सुनी बातों पर आते हैं। आपने बताया कि रेजर का नाम उनके नाम पर पड़ा, पर यह सिद्धांत उन्होंने बनाया नहीं था।
सही है, ये मितव्ययता का सिद्धांत पहले से चला आ रहा था, लेकिन ओकम ने इसे इतनी बार इतने जोरदार तरीके से और इतनी अलग अलग क्षेत्रों में इस्तेमाल किया कि यह हमेशा के लिए उनके नाम से जुड़ गया, जैसे कोई हथियार जिसका नाम उसके सबसे कुशल योद्धा के नाम पर पड़ जाए।
हाँ, ये अच्छा उदाहरण है। और उनका एविग्नन से भागना, वो तो किसी थ्रिलर फिल्म जैसा लगता है।
बिल्कुल, सोचिए 1328 में रात के अंधेरे में फ्रांसिस्किन मुखिया के साथ पोप के गढ़ से भाग निकलना और फिर दुश्मन सम्राट के पास पनाह लेना, ये वाकई बहुत नाटकीय और खतरनाक कदम था।
सही में,
मध्यकाल के सबसे मशहूर अकादमिक दलबदलुओं में से एक थे वो, और म्यूनिक पहुंचकर सम्राट से किया गया वो वादा, तलवार से मेरी रक्षा करो, कलम से मैं तुम्हारी करूंगा, ये तो इतिहास में दर्ज हो गया।
ये भी दिलचस्प है कि धर्मशास्त्र पर इतना गहरा असर डालने के बावजूद वे कभी पादरी नहीं बने।
हाँ, वे ताउम्र एक फ्रायर यानी भिक्षु ही रहे, और जैसा हमने पहले जिक्र किया, ऑक्सफोर्ड की डिग्री भी पूरी नहीं हुई थी।
हाँ,
तो तकनीकी तौर पर वे एक स्टूडेंट ही थे जब वे अपने कुछ सबसे प्रभावशाली काम लिख रहे थे।
कमाल है। और एक तरह से वे शुरुआती राजनीतिक पत्रकार भी थे।
खुलकर और आम लोगों तक पहुंचने वाली भाषा में लिखा।
और उनकी मृत्यु के बारे में क्या जानकारी है?
ज्यादातर माना जाता है कि उनकी मृत्यु म्यूनिख में 1347 के आसपास हुई, संभवतः उस समय फैली भयानक ब्लैक डेथ महामारी के कारण।
ओह, ब्लैक डेथ।
हाँ, कुछ कहानियां हैं कि मरने से ठीक पहले उनका चर्च से समझौता हो गया था, लेकिन इस बात का कोई पक्का ऐतिहासिक सबूत नहीं है, ये थोड़ा विवादित है।
ये सारी बातें सुनकर एक ख्याल आ रहा है, ओकम का पूरा जोर चीजों को सरल बनाने, फालतू की जटिलताएं हटाने और सिर्फ असल, ठोस, अलग अलग चीजों और व्यक्तियों पर ध्यान देने पर था।
जी बिल्कुल।
आज की दुनिया को देखें, जो डेटा सिस्टम, बड़े बड़े नेटवर्क्स और अमूर्त ढांचों से भरी पड़ी है, क्या ऑकम का ये कहना कि असलियत तो सिर्फ व्यक्तियों की है, हमें कुछ जरूरी याद दिलाता है?
ये बहुत गहरा सवाल उठाया आपने। आज जब हम बड़ी बड़ी व्यवस्थाओं और बिग डेटा में उलझे रहते हैं, क्या ऑकम की सरलता की तलाश, ये जोर कि हर चीज की जड़ में व्यक्ति या अकेली चीज ही है, क्या ये अपने आप में क्रांतिकारी विचार नहीं है आज के लिए भी?
हाँ, शायद है।
शायद ये सोचने की बात है कि कहीं हम असलियत को समझने के चक्कर में उसे और ज्यादा जटिल तो नहीं बनाते जा रहे, जहां जरूरत नहीं वहां भी। ये एक ऐसा बिंदु है जिस पर रुककर जरूर सोचा जा सकता है।
तो कुल मिलाकर विलियम ऑफ ऑकम एक ऐसे विचारक थे जिन्होंने अपने दौर की सोच को, कह सकते हैं, जड़ से हिला दिया। उनके नामवाद, उनके रेजर, अनुभव पर उनके जोर और चर्च राज्य पर उनके विचारों ने मध्ययुगीन दुनिया को झकझोर कर रख दिया।
बिल्कुल, उन्होंने आने वाले आधुनिक दर्शन, विज्ञान और राजनीतिक विचारों के लिए रास्ता साफ किया। व्यक्ति पर उनका फोकस, चाहे वो तत्व मीमांसा में एक अकेली हस्ती के रूप में हो, ज्ञान के सिद्धांत में अनुभव करने वाले के रूप में, या राजनीति में अधिकार रखने वाले नागरिक के रूप में, यही उनकी स्थायी विरासत है। उन्होंने पुराने बौद्धिक ढांचों को चुनौती दी और तर्क, आस्था और राजनीति को एक नई राह दिखाई।
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात हस्ती, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ, जो हमारी दुनिया को समझने में मदद करता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत किया गया है।